તારીખ 10/3/1995 શ્રી મદ્રાસ ચંદ્ર પત્રાંક 593 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 131
શ્રી મદ્રાસ ચંદ્ર વચનામૃત પત્રાંક 569 હિન્દી મેં પ્રશ્ન સંખ્યા 458 પત્રાંક 569 પેજ 458 થોડા વિષય ચલા હૈ મોક્ષ કી ભૂમિકા કા વિષય હૈ પત્ર મેં ઓર આત્મકલ્યાણ કા વિચાર બલ બઢે ઇસ હેતુ સે લિખા ગયા યે પત્ર હૈ લિખતે હૈ કે યદિ કિસી ભી તથારૂપ યોગ કો પ્રાપ્ત કરકે જીવ કો એક ક્ષણ ભી અંતર્ભિત જાગૃતિ હો જાય તો ઉસસે મોક્ષ વિશેષ દૂર નહીં હૈ તથારૂપ યોગ કો યહાં આગે જાકર કે આત્મયોગ કહા હૈ આત્મયોગ મેને આત્મકલ્યાણ કા કોઈ પ્રસંગ બનના ઘટના બનની ઉસકો આત્મયોગ કહેતે હૈ મોક્ષ કે જીવન મેં આત્મકલ્યાણ હોવે એસી એક ઘટના ઘટતી હૈ કબ ઘટતી હૈ કે જબ ઉનકો આત્મકલ્યાણ કા તીવ્ર વિચાર આતા હૈ આત્મકલ્યાણ કી તીવ્ર ભાવના અંદર સે હોતી હૈ ઓર આત્મકલ્યાણ કી તીવ્ર અંતર ભાવના સે યદિ કોઈ ઉસ સત્પુરુષ કો ખોજતા હૈ ઓર સત્પુરુષ કા યોગ ભી હો જાતા હૈ તબ યે ઘટના ઘટતી હૈ ઉસકો આત્મયોગ કહેતે હૈ આત્મકલ્યાણ કા યોગ કહેતે હૈ યા ઉસકો યહાં તથારૂપ યોગ કહા તથારૂપ મેને જૈસા ચાહિયે વૈસા જૈસા હોના ચાહિયે વૈસા કોઈ યોગ સંયોગ કોઈ ઘટના એસી ઘટે તો જીવ કો અંતર્ભિત જાગૃતિ હો જાય અંતર્ભિત જાગૃતિ કા દો પ્રકાર સે અર્થઘટન હો સકતા હૈ એક તો વો પ્રકાર હૈ કે જિસમે અનાદિ સે જો સંસાર પરિણતિ હૈ વો સંસાર પરિણતિ ટૂટ જાતી હૈ જિસકી તો એક જો અનાદિ કા જો આવરણ થા વો આવરણ હટતા હૈ ઓર આત્મા અપને કલ્યાણ કે વિષય મેં યા સ્વરૂપ કે વિષય મેં જાગૃત હો જાતા હૈ લાપરવાહ યા બેદરકાર નહીં રહેતા બહુ જાગૃતિ આ જાતી હૈ નાસ્તી સે એક આવરણ હટ ગયા હૈ યાને અંદર મેં કોઈ એસી ચોટ લગી કે વો અંતર ભેદ અંતર ભેદાઈ ગયું જેને એમ કહેવામાં આવે છે અંતરંગ મેં એક પરિણતિ અનાદિ સે જમી હુઈ હૈ સંસાર પરિણતિ ઉસ પરિણતિ સે ઉસ પરિણતિ કે કારણ સે જીવ કો આત્મબોધ કી અસર નહીં પહોંચતી આત્મજ્ઞાની ભી મિલતે હૈ આત્મબોધ ભી મિલતા હૈ લેકિન એક અસર પહોંચની ચાહીએ વો અસર નહીં પહોંચતી હૈ એસી એક પરિસ્થિતિ સંસારી જીવ મેં ખડી હૈ बड़ी है अनादि से, कि बोध की असर नहीं आती है। तो वो परिणति भेदी जाती है, छेदी जाती है, तभी आत्मबोध की असर पहुंची वहां, और वो जीव अपने आत्म कल्याण के विषय में एकदम जागृत हो जाता है, बहुत जागृत हो जाता है। एक तो ऐसा काम बनता है, एक दूसरा वो भी बनता है कि अपना आत्म कल्याण सर्वोत्कृष्ट है और ये एक रहस्यभूत विषय अनादि से जो रहा है उस विषय में उसको सत्पुरुष के योग से कुछ प्रकाश मिलता है। अंतरंग का, अंदरूनी बात का भेद माने रहस्य, या भेद का अर्थ दूसरा लिया, भेद माने रहस्य, टॉप सीक्रेट, वो प्राप्त होने से जागृति आ गई। उसको भी कहते हैं अंतर्भेद जागृति। ऐसी एक घटना जब मुमुक्षु के जीवन में प्रत्यक्ष सत्पुरुष के योग से वो घटना घटती है, तब उस जीव के लिए मोक्ष विशेष दूर नहीं है। ज्ञानी के ज्ञान में भी आ जाता है कि ये जीव की जागृति देखते हुए वो तिर गया, तिर जाएगा, मतलब तिर गया, तिर जाएगा आगे जा करके, लेकिन वो समीप दिखता है कि वो तिर गया, अब वो तिर गया, अब वो डूबने वाला नहीं है। और उस जीव को, स्वयं को भी ऐसा लगता है कि ऐसी जागृति कभी मुझे आई नहीं है। ये सत्पुरुष का बोध का उतना असर हुआ है कि मेरा अंतर है वो भेदा गया है, भेदाई गयो छे, मारो अंतर भेदाणो छे। तो उसको अंतरंग से मालूम पड़ता है कि ऐसी कोई अपूर्व जागृति चल रही है, ऐसी जागृति आई है कि ऐसी जागृति कभी नहीं आई थी, ऐसी अपूर्व जागृति है। तो उसको भी अपने मोक्ष के विषय में शंका नहीं रहती। मेरा मोक्ष अल्पकाल में अवश्य हो ही जाएगा वो उनको लगता है, उसमें उसको शंका नहीं रहती। तो इसको आलोक भर भय और परलोक भय चला गया कि अगले भव में मेरा कौन सा भव होगा, वो बात उनको नहीं रही। तो सतत रहती ही है, परिणति बन जाती है, इसकी भी एक परिणति बन जाती है, तो सतत जागृति रहती है। जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य है वो कोई स्मरण थोड़ा थोड़ी करना पड़ता है, फलाना फलाना है उसका भान रहता है। इससे थोड़ा विशेष रूप से यहां जागृति में थोड़ी विशेषता है, अंतर जागृति में विशेषता ज्यादा है। इसका भान तो अपने को कोई बतावे तब मालूम पड़ता है कि हाँ मनुष्य हूं, ऐसा भान रहता है, लेकिन ये जागृति में कोई विशेषता है। ऐसी एक जागृति आती है, उसकी अपूर्वता भी लगती है और निशंक रूप से मोक्ष का विश्वास पैदा हो जाता है। ज्ञानी के ज्ञान में भी आ जाता है, जिस ज्ञानी के वो संपर्क में है उसके ज्ञान में भी आ जाता है, और खुद को भी मालूम पड़ जाता है, दोनों बात बनती है। वो निशंकता इस प्रकार की है कि उसमें भ्रमणा है ऐसा नहीं लगता है। ज्ञानी तो कन्फर्म नहीं करे वो सवाल नहीं है, जिस ज्ञानी के संपर्क में हो उसको तो कन्फर्म नहीं करने का सवाल नहीं, क्योंकि वो तो उनकी योग्यता को बराबर पहचानता ही है, इसलिए कन्फर्म नहीं होने का भी सवाल नहीं है। विषय बहुत अंदर से आता है तो उसमें भ्रमणा नहीं रहती है, क्योंकि अपने आत्मकल्याण की तीव्र भावना थी, सत्पुरुष की खोज भी थी और सत्पुरुष मिले भी। इतना जो एक योग हुआ है आत्मयोग तथारूप योग, उसमें शंका का अवकाश नहीं है, शंका की गुंजाइश नहीं है। और जागृति खुद ऐसी चीज है, वरना उंडे उंडे जो भ्रमणा होती है उसमें उंडे उंडे शंका रहती है, क्योंकि जो जीव अंधेरे में खड़ा है और जो प्रकाश में खड़ा है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। अंधेरे में भीतर में कहीं न कहीं शंका, उंडे उंडे पर शंका रहेगी, जबकि यहां निशंक रूप से बहुत तीव्र जागृति आ जाती है। ऐसे जीव के लिए मोक्ष विशेष दूर नहीं है, वो मोक्ष से ज्यादा दूर नहीं है, उसका संसार अभी खत्म होने जा रहा है। वो तो बात है, योग में वही बात है, योग में दो ही बात है, एक तो अपने आत्म कल्याण की तीव्र वृत्ति भी होती है और साथ साथ प्रतिबंध छूट जाता है, उस वक्त उसका प्रतिबंध भी छूट जाता है। प्रतिबंध छूट जाता है तभी पहचान होती है, जहां तक प्रतिबंध नहीं छूटता है वहां तक पहचान होने में भी ज्ञान को एक आवरण है, इसलिए पहचान नहीं होगी, क्योंकि प्रतिबंध स्वयं यह सूचित करता है कि जीव का झुकाव आत्मकल्याण की ओर अधिक नहीं है। हाँ, पता चल जाता है, क्यों नहीं पता चले, खुद पता लगाना चाहे तो पता लगता है। कमजोरी तो है ही, उसमें कोई सवाल नहीं है, फिर तो क्या है कि बहुत उसकी वेदना नहीं आई है, छूटने का भाव रहता है, मालूम भी पड़ता है कि मेरा इधर प्रतिबंध है, लेकिन वेदना नहीं आई है। अंदर से वेदना आनी चाहिए इसकी, अपना कल्याण के लिए अंदर से वेदना आनी चाहिए, तीव्र रूप से वेदना आती है उनको, तीव्र रूप से वेदना आती है तो प्रतिबंध छूट जाता है। अन्य परिणाम में जितनी तादात्म्य वृत्ति है उतना जीव से मोक्ष दूर है। मोक्ष समीप किसको है उसकी भी बात की, और मोक्ष दूर किसको है उसकी भी बात कहते हैं, कि अन्य परिणाम में तादात्म वृत्ति तद आत्म रूप वृत्ति, वही ही आत्मा है। अन्य परिणाम है ऐसा ही मैं हूँ, ऐसा तन्मय परिणाम, तदरूप परिणाम। जितना उसमें डिग्री बहुत है, उसकी डिग्री जितनी ज्यादा उतना मोक्ष दूर ज्यादा, और उसकी डिग्री जितनी कम हुई उतना वो मोक्ष के समीप आता है। क्यों? कि अन्य परिणाम में, अन्य परिणाम में विभाव परिणाम जितने भी हैं, उसमें तदात्म वृत्ति तद्रूप वृत्ति उस परिणाम के रस के कारण से है, और रस है वही उसका बंधन है। वही पूरा 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 जीव वहां बंधन में आ जाता है भाव रूप से, भाव से बंधता है, फिर इसका फल द्रव्य बंधाता है, तो पूरा बंध जाता है, बंधन में आ जाता है, पूरा पकड़ा जाता है उस रस में, रस की पकड़ में आ गया पूरा का पूरा। तो वही बंधन है, जो बंधन है मोक्ष से विरुद्ध है, बंधन खुद तो मोक्ष से विरुद्ध है, इसलिए मोक्ष उसको दूर है। जितना तीव्र बंधन उतना मोक्ष से दूर, ये तो सीधा साधा हिसाब है। यदि कोई आत्मयोग बने, यदि कोई आत्मयोग बने तो इस मनुष्य भव का मूल्य किसी तरह से नहीं हो सकता। जैसा ऊपर कहा वैसा, अगर जीव को इस मनुष्य भव में आत्मकल्याण की अपूर्व भावना जागृत हो, और साथ साथ उनको सत्पुरुष की आवश्यकता महसूस हो, और उस आवश्यकता के वशात उनकी खोज से उनको कोई सत्पुरुष मिल भी जाए, ऐसा कोई आत्मयोग बने, ये आत्मकल्याण का परम योग है, ऐसा कोई योग बन जाए इस मनुष्य भव में, तो इस मनुष्य भव की कीमत बहुत बड़ी है, इसका कोई मूल्य नहीं हो सकता फिर। और आत्मकल्याण के विषय में ऐसा योग नहीं बने और मनुष्य आयु पूरा बीत जाए तो इस मनुष्य आयु की कोई कीमत भी नहीं है। अनंत बार ऐसा मनुष्यपना आया और वो मनुष्यपना चला गया। इसलिए कहा कि यदि कोई आत्मयोग बने तो इस मनुष्य भव का मूल्य किसी तरह से नहीं हो सकता। किस वस्तु से इसका मूल्य किया जाए, ऐसी कोई वस्तु नहीं है, कोई उपमा योग्य पदार्थ नहीं है कि जिससे इसका मूल्यांकन किया जाए। एक भव अनंत भव के नाश का कारण बन जाता है, इतना इसका मूल्य है। अनंत भव के नाश मतलब अनंत भवों के दुखों का भी नाश हुआ उसको, जन्म के मरण के पीड़ा के बाधा के टेंशन के सब प्रकार के, तो इसका मूल्य किस में कैसे गिना जाए, किसी तरह से इसका मूल्य नहीं हो सकता। और जीव को, मुमुक्षु जीव को भी ऐसा लगना चाहिए कि मेरा यह भव अनंत भव मिटाने के लिए आया है। अब के जो मनुष्य का भव आया है वो अनंत भव मिटाने के लिए आया है, अब मैं भटकने वाला नहीं। यदि कोई आत्मयोग बने तो इस मनुष्य भव का मूल्य किसी तरह से नहीं हो सकता। प्रायः मनुष्य देह के बिना आत्मयोग नहीं बनता। ऐसा आत्मकल्याण का योग बाकी जो तीन गति है उसमें नहीं बनता। ऐसे तीन गति में ऐसी इस आत्मयोग की विरुद्ध परिस्थिति बहुत है। नारकी में मारा मारी से बचता नहीं, और देवलोक में दैवी भोग उपभोग के सामने कुछ सूझे ही नहीं। अरबों वर्षों का आयु कहां चला जाता है उसका पता नहीं लगता है। ऐसा बनता है राग में, कहां निकल गया समय एकाग्रता में, राग की एकाग्रता में पता ही नहीं चले। और त्रियंज गति में ज्ञान कुंठित हो जाता है, और संगनी पंचेंद्रिय को भी ज्ञान बहुत कुंठित हो जाता है, और असंगनी पंचेंद्रिय चार इंद्रिय तीन इंद्रिय दो इंद्रिय एक इंद्रिय उनको तो विचार करने की शक्ति चली गई, वो तो विचार ही नहीं कर सकता, मन नहीं है उनके पास। तो विचार कर सके आत्मकल्याण कैसे करना, वो बात ही नहीं रही उनको तो। इसलिए यहाँ कहते हैं कि प्रायः मनुष्य देह के बिना आत्मयोग नहीं बनता। ऐसा जान करके, अत्यंत निश्चय करके, ऐसा जान करके और अत्यंत निश्चय करके, ऐसा जान करके ऊपर ऊपर से बात को छोड़ नहीं दिया कि ठीक है, वो जानने को मिल गया कि मनुष्य भव में आत्मकल्याण करने का मौका बहुत है। अत्यंत निश्चय करके इसी देह में आत्मयोग उत्पन्न करना योग्य है, ऐसा निश्चय, दृढ़ निश्चय आना चाहिए। जो कुछ कसर रहती है, जैसे हम कमजोरी कहते हैं, कसर रहती है, वो इसी कारण से रहती है कि हमारा निश्चय दृढ़ निश्चय नहीं है, कि हमको किसी कीमत पे भी आत्मकल्याण कर लेना है। ये तो एक निश्चय करने का सवाल है, उतनी कीमत देनी नहीं पड़ती है, लेकिन एक दफे दृढ़ निर्धार हो जाए कि किसी कीमत पे हमको आत्मकल्याण कर लेना चाहिए, इसलिए कर लेना ही है, तो आगे का काम बहुत सरल है। ऐसा निश्चय होने के बाद फिर आगे बढ़ने का मार्ग बहुत सरल है, और जहां तक ऐसा निश्चय नहीं होता वहां तक उसको कठिन लगता है मार्ग। ये बहुत मार्ग आसान नहीं है, बहुत कठिन लगता है, कठिन है कठिन है ऐसा लगने लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीव करने का निर्धार करे तो काम सरल है, लेकिन वो करने का निर्धार नहीं करता है तो काम बनता नहीं है। जगत में भी कोई भी काम का निर्धार होने के बाद फिर वो काम का अमल कैसे करे, पहले डिसीजन लिया जाता है, फिर एग्जीक्यूटिव स्टेज में आते हैं कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे करें। तो यहां भी पहले पक्का निर्धार, दृढ़ निर्धार होना चाहिए। एक बहुत ऐसा महत्वपूर्ण स्टेज है कि यहां से मार्ग की सरलता चालू हो जाती है, जो 211 पत्र में कृपालु देव ने एक बात लिखी है कि सत सरल है, सत सुगम है और सर्वत्र इनकी प्राप्ति होती है, ये ऐसे जीव के लिए लिखा है कि जिसको सत प्राप्ति के लिए दृढ़ निर्धार हुआ हो। दूसरों के लिए तो सत दुर्गम है, ऐसा लगेगा बहुत दुर्गम है, बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है, ऐसा उनको लगेगा। अत्यंत निश्चय करके इसी देह में आत्मयोग उत्पन्न करना योग्य है। विचार की निर्मलता से यदि यह जीव अन्य परिचय से पीछे हटे तो, विचार की निर्मलता से यानी शुद्ध अंतकरण से, ये अदर वर्ड है शुद्ध अंतकरण का, निर्मल विचार से, अशुद्ध विचार से नहीं, शुद्ध विचार से, निर्मल कहो शुद्ध कहो, विचार मैंने उसका अंतरंग अंतरंग ये बात होना चाहिए, अंतकरण की बात होनी चाहिए। यदि जीव अन्य परिचय से पीछे हटे तो सहज में अभी ही उसे आत्मयोग प्रकट हो जाए, जैसा ऊपर कहा वैसा आत्मयोग, आत्मकल्याण का योग कैसे प्राप्त हो, इसका उत्तर है। आत्मयोग की जो बात चली, चर्चा चली, तो ये प्रश्न होना संभवित है कि ऐसा आत्मयोग कैसे बने, तो कि विचार की निर्मलता से लेकर के जीव अगर अन्य परिचय से पीछे हटे, अन्य परिचय मैंने क्या, अन्य पदार्थ और अन्य पदार्थ के प्रति के अपने परिणाम, दोनों से पीछे हटना मैंने दोनों में रस नहीं लेवे तो, रस लेने से परिचय बढ़ता है। सत्संग से वो फायदा होता है, वो बात है, वो तो है ही, इसलिए तो ज्ञानियों ने सत्संग करने के लिए बहुत पुकार पुकार करके कहा है, वो तो है, वो तो है। अन्य परिचय मैंने क्या, कि जिस विषय में जो जीव जितना रस लेता है उस विषय में उसका परिचय बढ़ता है, पर उस विषय में वो एक्सपर्ट भी हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज आती है, वो उस विषय का परिचय के कारण से आती है, और उस विषय का परिचय कब होता है कि उस विषय में रस लेता है तो होता है। तो मूल में तो रस लेने की बात है, अन्य परिचय से पीछे हटे पाछो बढ़े तो उसे आत्मयोग सहज मात्र में प्रकट हो, तो आत्मयोग प्रकट होने का एक अवकाश है। ऐसा कभी नहीं बनता कि बाहर में उदय में तीव्र रुचि और तीव्र रस हो और आत्मकल्याण की भावना भी साथ साथ हो, वो दो बात साथ में नहीं बनते। तो अंतर से आत्मकल्याण की भावना नहीं है शुद्ध अंतकरण से, उनको आत्मयोग कैसे बैठेगा, उसको सत्पुरुष का योग भी कैसे मिलेगा, या तो मिलेगा तो भी ऊपर से जाएगा वो, ऐसे हम लोग गुरुदेव को उपकारी मानते थे। और जो ऐसे ऐसे अध्यात्म के अच्छे प्रवचन किए, अच्छे प्रवचन दिए, और पहले हम नहीं समझते थे, अब कुछ समझने भी लगे तो अवश्य उपकार हमारे पर उपकार है ऐसा मानने लग जाते हैं, मानते हैं कि हमारे पर उपकार है। तो फिर ये लगेगा कि पर प्रेम प्रवाह बढ़े प्रभु से, वो प्रभु कहेगा, सत्पुरुष नहीं कहेगा, ज्ञानी नहीं कहेगा। अरे गुरु भी क्या कहे, प्रभु कहेगा, वहां तो प्रभु शब्द लिया है। पर प्रेम प्रवाह बढ़े प्रभु से, सब आगम भेद सो उर्वशे। बिना आगम पढ़े उस जीव को आगम का भेद मैंने रहस्य उनके हृदय में निवास करता है। बिना आगम पढ़े अगर आगम का रहस्य मुमुक्षु जीव की भूमिका में हृदय में हृदयंगम हो जाए तो क्या ये लब्धि नहीं है क्या? इसको लब्धि नहीं कहनी चाहिए क्या? हाँ, आगम पढ़कर के अगर आगम का रहस्य किसी ने जाना हो तो वो बात तो सीधी सरल है कि उसने पढ़ाई किया था तो उसको मालूम किया, मालूम हुआ। लेकिन बिना पढ़े जगह मालूम होता है तो ये अवश्य एक प्रकार की लब्धि ही है और इसका उपयोग होता है, लब्धि का उपयोग होता है। तो बाहर निकलती है बात, स्वयं अंदर से बात बाहर आती है। और उपयोग पूर्वक लब्ध होता है तो वो लब्ध किस लेवल का है इस पर उसकी स्थिति बनती है। ऊपर ऊपर के लेवल का हो तो दूसरा लब्ध उसको मार करके उसको हटाता है, और भीतर से आता है तो हमेशा की चीज बन जाती है। अंतरंग से उत्पन्न होता है तो कायमी चीज बन जाती है। ये लब्धि और उपयोग की एक विचित्र परिस्थिति है। सामान्य तौर से उपयोग से लब्ध होता है और विशेष रूप से देखो तो लब्धि से उपयोग आता है। जैसे सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन साथ में होता है, तो हमारे जिनागम में ऐसा लिखा है कि जिसको सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन हुआ उसको केवल ज्ञान की लब्धि हो गई। क्या इसका उपयोग बाद में होगा? केवल ज्ञान का उपयोग बाद में होगा, लब्धि पहले हो जाएगी। ये विशेष रूप से लब्धि की प्राप्ति है। और आत्मा में ऐसे सामर्थ्य है, शक्ति है कि बिना उपयोग भी लब्धि को वो प्राप्त करता है। लब्ध मैंने एक्वायर्ड नॉलेज, तो जो ज्ञान समझ में आया उसकी तो लब्धि हो जाती है, वो ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जैसे हम मैथमेटिक्स पढ़े थे स्कूल में या कॉलेज में, तो वो ज्ञान, अभी हम आत्मा की चर्चा कर रहे हैं तो भी हमारा गणित का ज्ञान चला नहीं गया। हम हिसाब किताब बराबर जानते हैं, ऑफिस में जाते हैं हिसाब किताब कर लेते हैं, वो ज्ञान हमारा नाश नहीं हुआ है। तो पहले पढ़े थे उसकी लब्धि है, वो लब्ध चालू रहता है। लेकिन बिना पढ़े भी लब्धि होती है, ये एक आत्मा की चमत्कारिक परिस्थिति है। आत्मा का ये चैतन्य का चमत्कार है कि बिना पढ़े ही लब्धि हो जाती है। क्या कहते हैं इधर, विचार की निर्मलता से यदि यह जीव अन्य परिचय से पीछे हटे तो सहज में अभी ही, सहज में और अभी ही विचार की निर्मलता आई तो देर नहीं लगेगी, उसे आत्मयोग प्रकट हो जाए, आत्मकल्याण का योग उसको प्रकट हो जाएगा, बहुत अल्प काल में हो जाएगा। और सत्संग प्रसंग का घिराव विशेष है, जीव को इस काल में असत्संग के प्रसंग का घिराव विशेष है। मैंने सत्संग को छोड़ करके चारों ओर से असत्संग का ही प्रसंग खड़ा है, उसमें घिरा हुआ जीव है, विशेष है। और यह जीव उससे अनादि काल का हीन सत्व हुआ होने से क्या हुआ है कि ऐसे असत्संग में बहुत काल रहा है और असत्संग का संस्कार भी बहुत ग्रहण कर लिया है, तो अनादि काल से ऐसा होने से, बहुत काल तक ऐसा होने से हीन सत्व हुआ है। हीन सत्व मैंने हीन पुरुषार्थी हो गया है। वो कहते हैं ना, किसी को काम करने की क्षमता नहीं होती है तो क्या कहते हैं कि आदमी में कोई दम नहीं है, वो नहीं काम कर पाएगा, उसमें काम करने की कोई शक्ति नहीं है। ऐसा आत्मकल्याण करने के विषय में भी जीव हीन सत्व हो गया है, हीणा हो गया है, उसका पुरुषार्थ नहीं उठता है। आत्मकल्याण के लिए जो स्फूर्णा आनी चाहिए अंदर से, वो नहीं आती है, क्योंकि अनादि से असत प्रसंग का, असत्संग के प्रसंग का बहुत परिचय किया है, बहुत रस लिया है और अपनी शक्ति को वो खो बैठा है। हीन सत्व हुआ है, मैंने अपने कार्य करने की अपनी जो शक्ति है उसको वो खो बैठा है। हीन सत्व हुआ होने से उससे अवकाश प्राप्त करने के लिए, किससे, ऐसे हीन सत्वपना से अवकाश प्राप्त करने के लिए अथवा उनकी निवृत्ति करने के लिए, अथवा ऐसा हो हीन सत्वपना का नाश करने के लिए यथा संभव सत्संग का आश्रय करे। आया कि नहीं आया, क्या करना चाहिए? यथा संभव मैंने संभवित हो सके उतना, जितना संभवित हो सके उतना, उस विषय में पुरुषार्थ को कभी गोपना नहीं चाहिए, यथा संभव है वो बात है। पूरी शक्ति से सत्संग हमें रहा करे ऐसा प्रयास करना चाहिए। यथासंभव सत्संग का आश्रय करे, वहां भी आश्रय शब्द लिया है, ऊपर भी सत्संग का आश्रय करने की बात थी कि सत्संग का, सत्संग में जाना वो बात नहीं है, सत्संग में बैठना वो बात नहीं है, सत्संग का आश्रय लेना है कि मेरे जीवन में कोई आधारभूत स्थान है तो ये सत्संग है, वही मेरा आश्रय स्थान है, वहीं मैं अपने आप को सुरक्षित बना पाऊंगा, और जगह मेरी कोई सुरक्षा नहीं है। ऐसा आधारभूत दिया पूर्वक जो सत्संग में शामिल होता है वो कहते हैं कि उसने सत्संग का आश्रय किया। उसकी निवृत्ति करने के लिए यथाशक्ति संभव सत्संग का आश्रय करें, तो किसी तरह पुरुषार्थ योग्य होकर विचार दशा को प्राप्त करें। तो किसी तरह मैंने सत्संग में उसको एक ऐसा प्रकार तरह मैंने ऐसा प्रकार उत्पन्न होता है कि पुरुषार्थ के योग्य होता है, उसको बल आने लगता है, पुरुषार्थ अपना आत्मकार करने के लिए दृढ़ता और बल आने लगती है, वो सत्संग के कारण बन सकता है। और पुरुषार्थ के योग्य होता है तो विचार दशा की प्राप्ति करता है, यानी आत्मकल्याण का विचार उसको विशेष रूप से इस दशा की प्राप्ति होती है। और यही आत्मविचार है, यही आत्मज्ञान का कारण है। आत्मविचार मैंने आत्मकल्याण का जो विचार है वही आत्मज्ञान का कारण है। इसलिए जो आत्मकल्याण के विचार आत्मज्ञान का कारण है, ऐसे आत्मकल्याण के विचार को कारण में कार्य का उपचार करके उसको भी आत्मज्ञान कह सकते हैं। जैसे संकित के कारण को संकित कहा ने कृपालु देव ने, तो वहां श्रद्धा की बात थी, और यहाँ ज्ञान की बात है, तो ज्ञान का कारण को भी ज्ञान कहो, ऐसा विचार दशा की प्राप्ति होती है जो विचार दशा आत्मज्ञान का कारण है। अब ऐसा होने के लिए क्या करना, ये भी एक प्रश्न था कि भव भ्रमण का की जो चिंतना है वो बढ़ाने का जो प्रश्न था उसका ठीक उत्तर आएगा। जिस प्रकार से इस संसार की अनित्यता असारता अत्यंत रूप से भासित हो, भाषित होना मैंने लगना लगने लगे कि ये संसार अनित्य है और असार है, मैंने सुख का कोई उसमें कारण नहीं है, जो भी कारण है वो दुख का है, जो सुख का कारण लगता है वो भ्रम से लगता है, वास्तव में दुख का ही कारण है। तो जिस प्रकार से संसार की अनित्यता लगे और असारता लगे और अत्यंत लगे, थोड़ी नहीं लगे अत्यंत लगे, उस प्रकार से आत्मविचार उत्पन्न होता है। आत्मकल्याण का विचार जो आत्मज्ञान का कारण है वो यहाँ से उत्पन्न होता है। अनित्यता और असारता भासित हुए बिना आत्मकल्याण का सही विचार किसी को भी आया हो ये मानने लायक बात नहीं है। संसार की अनित्यता और असारता लगे बिना आत्मकल्याण का सही विचार किसी को नहीं, योग्य यथार्थ विचार नहीं आता। आता है कि वो मानता है तो वो बात यथार्थ रूप से नहीं है, वो अयथार्थ रूप से है, तो इसका फल यथार्थ नहीं आएगा। यथार्थ विचार का फल यथार्थ है, यथार्थ भाव का फल यथार्थ है, अयथार्थ भाव का फल भी अयथार्थ है। इसलिए ये जो बात है वो बात पर ध्यान देने योग्य है कि हमको अनित्य ऐसे संसार में नित्यता क्यों लगती है, कैसे संसार की प्रवृत्ति लोग करते हैं कि जैसे कभी मरने वाले है ही नहीं, अब तो है, आज है, कल है ही, अब तो है, कब नहीं है उसका विचार ही इतना गौण रहता है कि जैसे मैं कोई कायम रहने वाला हूं। तो वहाँ आत्मविचार होने का कोई अवकाश नहीं है, वो आत्मकल्याण का विचार यथार्थ रूप से नहीं होगा। अब इस उपाधि कार्य से छूटने की विशेष विशेष आरती हुआ करती है। अब कृपालु देव अपने परिणामों का निवेदन कर रहे हैं यहां से थोड़ा। कि अब हमको तो ये व्यवसाय है, ये एक उपाधि का कार्य है, और उससे छूटने की विशेष विशेष आर्त ध्यान रूप परिणति हुआ ही करती है, इसलिए उसको आरती कहा। आर्त ध्यान रूप परिणति, उतना हमारा आर्त ध्यान चलता है कि कब इस झंझट से हम छूटे। हमको पैसे का तो इतना मूल्य नहीं है, फिर भी हमको हमारा समय देना पड़ता है, हमारी थोड़ी शक्ति का भी खर्च करना पड़ता है, वो हमको बर्दाश्त होता नहीं है। तो विशेष रूप से छूटने के परिणाम हुआ करता है, और छूटे बिना जो कुछ भी काल बीतता है वह इस जीव की शिथिलता ही है ऐसा लगता है, अथवा ऐसा निश्चय रहता है। या थोड़ा ये विषय ऊपर हम थोड़ा ज्यादा विचार करेंगे। वो अपने विषय में लिखते हैं कि इस उपाधि कार्य से छूटे बिना, छूटने का परिणाम तो ये साल है 28 साल की उम्र का पत्र है, तो 24-25 साल से छूटने के परिणाम हो गए। अब 4-5 साल से तो व्यवसाय में जुड़े हैं और छूटने के परिणाम चालू हो गए। मैंने आजकल तो युवानी का प्रवेश क्या उम्र है 24-25 साल का, तब से उनको व्यवसाय से निवृत्त होने का बार बार विचार आया है, और 28 साल की उम्र में तो बहुत तीव्र विचार आया है, इसलिए आर्त ध्यान बोल लिखा है वहाँ। बहुत आतुरता रहती है कि हम कब छूटे, हम कब छूटे, और ऐसा लगता है कि हम छूटे छूटे ऐसा परिणाम होता है, छूट नहीं पाते तो ये हमारी शिथिलता है, ऐसा हमको लगता है कि ये हमारी शिथिलता है, और ये हमारा निश्चय है कि शिथिलता ही है ये। इस पर थोड़ा और विचार करना है कि ऐसा ये खुद लिखते हैं, वो इनकी हीनता नहीं है, वो इनकी महानता है। मुमुक्षु को ये समझना है, मुमुक्षु यदि ज्ञानी पुरुष की हीनता को देखेगा तो उसको भक्ति का परिणाम कहां से रहेगा, अत्यंत भक्ति का परिणाम कहां से रहेगा, उनको तो अभक्ति का परिणाम हो जाएगा। देखो वो भी व्यापार करते थे, छूटने का तो भाव उनको भी था लेकिन नहीं छूट सकते थे, ऐसा हमको भी छूटने का तो भाव होता है लेकिन हम भी नहीं छूट सकते हैं। हाँ, वो बराबरी करता है, सत्पुरुष के वचन के साथ अपनी बराबरी करने लग जाता है, बहुत बड़ी भूल होती है उसमें। ज्ञानी पुरुष होते हैं उनको मान अपमान की कोई कल्पना नहीं होती है कि ऐसा मैं लिखूंगा तो मेरा मान कम हो जाएगा, ऐसा उनको नहीं लगता है। क्यों उस ऐसा किसको लगता है कि जिसको मान की अपेक्षा रहती है उसको ऐसा लगता है, जिनको कोई मान प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं है उनको अपना अवगुण बताने में कोई हिचकिचाट नहीं होती, होता ही नहीं हिचकिचाट उसको।
वो बहुत सरलता से और बहुत नम्रता से बोल देगा, हमारे में भी ये गड़बड़ है, हमको भी ये हमारा अवगुण दिखता है, गुण नहीं दिखता है, दोष है, दोष ही दिखता है, दोष को गुण कभी नहीं कहेंगे। लेकिन मुमुक्षु को थोड़ा इधर सावधानी रखना है कि मुमुक्षु ऐसी बात ज्ञानी पुरुष की अपनी बात सुन करके कहीं अभक्ति के परिणाम में नहीं आ जाए। उनको तो ऐसे परिणाम दर्शाने वाले का भी सद्गुण दिखना चाहिए कि अरे कितनी सरलता, कितनी मध्यस्थता, कितनी नम्रता, और यही इसकी महानता है। तो ये अपूर्व गुण दृष्टिगोचर होना चाहिए उसमें। अपूर्व गुण दृष्टिगोचर होता है तो यहां भी निर्मलता आती है, देखने वाले को भी निर्मलता आती है। गुण वो दिखाते हैं अपना दोष, और मुमुक्षु को गुण का दर्शन होता है उसमें। देखो ये दृष्टि उलट भई मेरे नैन की उलट भई, उल्टी बात है वो वो दिखाते हैं कुछ, उनको दिखता है कुछ और, इसके नाम उलट भई है ये मार्गानुसारी को ऐसा होता है, इसकी दृष्टि उलट जाती है बिल्कुल। उसको खुद को भी मानवपन का प्रश्न नहीं रहा कि मेरा का पद है, मार्गानुसारी थे तो राजरानी थी, लेकिन उसके महल में साधु लोग आते जाते थे और साधु लोगों के साथ वो संग करती थी, सत्संग करती थी। तो लिखा कि साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, लोग इनकी चर्चा करते थे कि देखो राजरानी है, स्त्री पर्याय है, ये साधुओं के साथ, बाबा साधुओं के साथ बैठती है, सत्संग करती है, ये कोई तरीका होता है क्या? सत्संग करने का कोई तरीका होता है, मर्यादा होनी चाहिए। तो लोक लज्जा में तो वो सब बात वही ऐसी, मर्यादा मैंने लज्जा, लज्जा मैंने मर्यादा, ऐसी बात चलेंगे। वो बोलते हैं कि मैंने तो लोक लाज खोई है, मुझे कोई परवाह नहीं है लोगों की मर्यादा की, मुझे कोई, लोग कहेंगे कहेंगे, कहने दो उसको, हमको इसकी कोई परवाह नहीं है। क्योंकि हमारे परिणाम ऐसी मर्यादा में मर्यादित हो सके, रह सके, ये परिस्थिति रही नहीं, हम करें भी क्या? जब इनके परिणाम ही तीव्रता से आगे बढ़ते हैं तो उस मर्यादा का उल्लंघन हो ही जाता है। लोग चर्चा करेंगे अवश्य, लोक की दृष्टि और ज्ञानी की दृष्टि में पूर्व पश्चिम जितना अंतर है, कितना अंतर है? पूर्व पश्चिम जितना अंतर है। तो हमने खोई तो खोई, अगर उसमें गुण दिखता है तो प्रशंसा करेंगे वही बात का, जिसको वो बात समझ में आएगी वो उसी बात की प्रशंसा करेंगे, स्तुति करेंगे कि वाह कितने परिणाम है कि जिसमें मान अपमान की कोई गिनती नहीं है, उसको मान का परिणाम छोड़ना कोई आसान बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। वो भी मनुष्य गति में मान नहीं होता तो मोक्ष हथेली में होता, ऐसा जबरदस्त प्रकृति है मान के। लेकिन जब मुमुक्षु अपने आत्म कल्याण की तीव्र भावना में आता है तो बात छूट जाती है, मान अपमान जैसी कोई चीज हमें नहीं है, हमें किसी से किसी का भी सर्टिफिकेट लेना नहीं है। और लोगों की गुड बुक्स में नाम लिखाने से नुकसान होता है उसमें नुकसान होता है, मान चढ़ जाता है, कसाई बढ़ती है, बैड बुक्स में भले ही नाम लिख ले, अपने को क्या जरूरत है, अपना मान चढ़ने का एक प्रसंग ही चला जाएगा, मान चढ़ने का प्रसंग ही नहीं आएगा, क्योंकि वो तो बैड बुक्स में अपने को गिनते हैं। चलो अच्छा हुआ। तो ऐसे लोगों के साथ उनका परिचय, संबंध, व्यवहार सब कट ऑफ हो जाएगा। तो असत्संग से बचेगा वो जीव, ऐसे जीवों का सत्संग करना, संग करना भी अच्छा नहीं है। ये सब बात ही कोई ऐसी उल्टी बात है। तो उन्होंने यहाँ इस विषय में और भी बात थोड़ी लिखी है, कथानुयोग की एक दो बात की लिख करके एक बहुत अच्छा न्याय, लोकोत्तर न्याय यहाँ लिया है, विशेष रूप से लेंगे कल समय हुआ है।